शाम के लगभग 6 बज रहे थे। शिवी अपने घर पर बैठकर सिद्धांत के कॉल का इंतजार कर रही थी। इसी बीच नील और नितारा वहां पहुंचे। शिवी को परेशान देखकर नितारा ने नील से दबी आवाज में कहा, मैं बाहर से कुछ ले आती हूँ, तब तक तुम इसका मूड रिफ्रेश करने की कोशिश करो, शायद ये मेरे सामने खुलकर बात ना पाए। नील ने उसकी बात पर हामी भरी, मैंने भी नोटिस किया है, ये एक दो दिन से कुछ ज्यादा ही खोई हुई है, जो भी है जरूर इसके पापा से ही जुड़ा होगा। ओके, आई एम गोइंग, तुम्हारे पास एग्जैक्टली 2 घंटे हैं, कहता नितारा वापस बाहर चली गई। नील ने अपने चेहरे के भावों को सामान्य किया और शिवी के पास आकर बैठ गया। क्या हुआ लिटिल सिस्टर, मेरे अलावा किसी की इतनी हिम्मत हो गई जो तुम्हें परेशान करे? कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन, शिवी ने इधर उधर देखा। नील को अकेले वहां देखकर उसने पूछा, नितारा नहीं आई? डोंट टेल मी वो तुमसे 2 दिन में ही परेशान हो गई। वो बाहर से खाने के लिए कुछ लेने गई है ताकि हम बात कर सकें। अब बताओ तुम क्यों परेशान हो? आज मेरे पापा की केस हियरिंग थी, शिवी ने बुझी आवाज में बताया। तो क्या वर्डिक्ट निकला? नील ने उत्सुकता से पूछा। वही तो पता नहीं चला, मैं सिट के कॉल का वेट कर रही थी, अब तक तो हियरिंग कब की खत्म हो गई होगी। तुम भी ना एक नंबर की डफर हो, नील ने कहा, ऐसे तो बहुत इंटेलिजेंट बनती हो और जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। सिडनी कॉल नहीं किया तो तुम कर लेती? नील ने शिवी का मोबाइल उठाकर उसके मुंह के सामने किया ताकि उसे अनलॉक कर सके। शिवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ जानती हूँ कि मैं भी कॉल कर सकती थी, पर नहीं किया, मुझे डर लग रहा है। तुम्हारे डरने से कोर्ट का डिसीजन चेंज नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें हाई कोर्ट में अपील करनी होगी। चलो अब जल्दी से मोबाइल उठाओ और सिट को कॉल करो। नील के समझाने पर शिवी सिद्धांत को कॉल करने के लिए तैयार हो गई। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया। नील ने उसके कंधे पर हाथ रखा, घबराओ मत। शिवी ने सिद्धांत को कॉल किया। वहीं सिद्धांत ने शिवी का कॉल आता देखा तो उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे। उसने कॉल उठाया, बोलो शिवी। सिद्धांत की आवाज में छिपी मायूसी शिवी ने तुरंत भांप ली। उसने डरते हुए पूछा, पापा ठीक है ना? उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है, हमारा उन्हें समझाना कोई काम नहीं। सिद्धांत उसे कोर्ट में जो भी हुआ उसके बारे में बता रहा था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने से कॉल कट होने पर बीप की आवाज हुई। अपने पापा को सजा होने की बात सुनकर शिवी की आंख से आंसू बहने लगे। नील भी उसे उस वक्त कुछ कह नहीं पा रहा था। उनका केस सेशन कोर्ट में चल रहा था ना, क्यों ना हम हाई कोर्ट में अपील करें, नील ने उसे समझाने के लिए कहा। उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं जानती उसकी वजह क्या है, पर वो बार बार यही कह रहे हैं कि उन्होंने ही उस लड़की को मारा था, शिवी ने बताया। क्या तुम श्योर हो कि उन्होंने उस लड़की को नहीं मारा? शिवी ने हाँ में सिर हिलाया। नील ने फिर कहा, अच्छा क्या तुम उस लड़की या उसके परिवार के बारे में कुछ भी जानती हो? हम उनके घर जाकर रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद वो केस वापस ले लें। मैं इस केस के बारे में कुछ नहीं जानती, मम्मा ने हमेशा मुझे इन सबसे दूर रखा, मैं भी अपने पापा के बारे में गलत न्यूज़ नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि कभी सिद्धांत से भी नहीं पूछा कि उस रात जिसका कत्ल हुआ था वो लड़की कौन थी, शिवी ने बताया। जब उसके पापा ने पहली सुनवाई में ही अपने जुर्म को कबूल किया था तब उसकी माँ नंदिनी ने उसे इन सबसे दूर रखने के लिए उसे लंदन ले आई। यहाँ आने के बाद उसने पूरी कोशिश की कि वो शिवी को इन सबसे दूर रख सकें। शिवी ने जैसे तैसे सिद्धांत से कॉन्टैक्ट कर इस केस को लड़ने के लिए मनाया था। तुम्हें पता लगाना चाहिए, क्या पता इससे हमारी कोई हेल्प हो सके, नील ने सुझाव दिया। मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होगा, नितारा ने जवाब दिया, जो न जाने कब से उनकी बातें सुन रही थी। वो उनके पास आकर बैठ गई और फिर बोली, आई एम सॉरी कि मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली, वो मैं अपना पर्स यहीं भूल गई थी। वापस ऊपर आई तो शिवी के पापा को सजा होने की बात सुनी और फिर चाहकर भी वापस नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, मैं जानती हूँ वो बेगुनाह है और ये सच कभी नहीं बदल सकता, शिवी ने जवाब दिया। तुम्हें ये क्यों लगता है कि उस लड़की की फैमिली से कॉन्टैक्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा, नील ने नितारा से पूछा। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी अपने को खोया है, क्या पता वो लड़की किसके लिए कितनी मायने रखती होगी, ऐसे में हम उनसे बात भी करने जाएंगे तो ये उनके साथ गलत होगा। जब इसके पापा खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने उस लड़की का मर्डर किया है, चाहे वो सच हो या झूठ, लेकिन उस लड़की के घर वालों की नज़रों में शिवी उनकी बेटी की मर्डरर की बेटी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं उनके घर वालों की जगह होती तो मैं भी ऐसे इंसान को कभी माफ़ नहीं करती जिसकी वजह से मेरी किसी अपने की जान गई हो, नितारा ने काफ़ी समझदारी से पूरी स्थिति उनके सामने रख दी। उसने जो भी कहा कहीं ना कहीं शिवी और नील दोनों ही उसकी बात से सहमत थे। ये बिल्कुल ठीक कह रही है, शिवी ने नितारा की बात पर हामी भरी। मुझे नील का हाई कोर्ट में अपील करने वाला आइडिया अच्छा लगा, तुम जानती हो मैं भी एक लॉयर हूँ, ऐसे में क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम अपने दोस्त से मेरी बात करवाना और उसे कहना कि वो हाई कोर्ट में अपील करें, एक से भले 2 होते हैं, हम दोनों मिलकर इस केस पर काम करेंगे तो तुम्हारे पापा को बेगुनाह साबित कर देंगे। नितारा की बात सुनकर शिवी को बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या सच में ये पॉसिबल है? पापा अपनी बात पर टिके हुए हैं, क्या फिर भी हम उन्हें बेगुनाह साबित कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट से झूठ बोलने के जुर्म में उन्हें सजा होगी। सजा ज्यादा नहीं होगी पर केस काफी टाइम से चल रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें और ज्यादा जेल में रहना होगा। वो पहले ही काफी कुछ भुगत चुके हैं। नितारा की बातों ने शिवी को काफी राहत दी। उसने उसी समय सिद्धांत को कॉल करके हाईकोर्ट में अपील लगाने के लिए कहा, जिसके जवाब में सिद्धांत ने आगे की प्रोसेस संभालने की बात कही। इस बार कुछ भी करके मैं उनकी केस हियरिंग पर इंडिया जाकर रहूंगी, शिवी ने कहा। इस बार का क्या मतलब? मतलब तुम उनकी हियरिंग पर भी इंडिया जाने वाली थी और नहीं जा पाई? तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकती हो? नील ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि पिछली बार भी मेरी वजह से तुम्हें घर से निकाल दिया गया था, शिवी सकपकाकर बोली। नील को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि शिवी उसे बिना बताए इंडिया जाने वाली थी। उसने मुंह बनाकर कहा, तो तुम्हें क्या लगता है इस बार वो मुझे कोई प्राइज देते? बेवकूफ लड़की, उन्होंने मुझे तुम्हारा पूरा ख्याल रखने के लिए कहा था। पिछली बार तो फिर भी मेरे पास बचने का ऑप्शन था, इस बार तो तुम सच में मुझे घर के साथ साथ मेरे पापा की प्रॉपर्टी से भी बेदखल करवा देती। शिवी और नील के बीच फिर से मीठी नोकझोंक शुरू हो गई थी। नितारा मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रही थी। शिवी का मूड ठीक होते देखकर उसे भी बेहतर महसूस हो रहा था। आर्या के जाने के बाद से ओबरॉय मेंशन में माहौल काफी सामान्य चल रहा था। पहले जब भी वो घर आता तो उसके और मिस्टर ओबरॉय के बीच गहमागहमी बढ़ जाती और पूरे परिवार को ना चाहते हुए भी वो सब सहना पड़ता। शौर्य और मायरा एक साथ लिविंग रूम में मौजूद थे। दोनों सोफे पर एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे थे। तुम्हें नहीं लगता मिस्टर अखलू के जाने के बाद से घर में काफी शांति है और मुझसे ये शांति बर्दाश्त नहीं हो रही? शौर्य ने अपना चश्मा चढ़ाकर कहा।
सही कहा तुमने, जब डैड और उनके बीच बहस होती है तो अच्छा खासा फ्री का एंटरटेनमेंट मिल जाता है। तुम्हारी मॉम ने भी उस करण को एक्सेप्ट कर लिया, मुझे लगा था वो अच्छा खासा ड्रामा करेगी, मायरा ने कहा। हाँ मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब उन्होंने ये डिसीजन लिया था। उन्होंने कहा वो ये सब मेरे लिए कर रही हैं। उन्हें छोड़ो और ये बताओ, क्या हमें बिग ब्रो को वापस लाने का प्लान बनाना चाहिए? हाँ, जैसे इस बार वो वापस आ ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे, डैड ने लास्ट टाइम उनकी बहुत बेइज्जती की थी। सच कहूँ तो मुझे भी उन पर बहुत दया आ रही थी जब दादू ने उनके पूछने पर कोई जवाब नहीं दिया था। मायरा की बात सुनकर शौर्य ने चुटकी बजाई। मिल गया आइडिया, दादू हमारी हेल्प कर सकते हैं। और वो हमारी हेल्प क्यों करेंगे? लास्ट टाइम हमने जो भी किया था उस वजह से वो काफी नाराज हैं। हमने सॉरी भी नहीं बोला। तो क्या प्रॉब्लम है, एक छोटा सा सॉरी ही तो बोलना है। शौर्य अपनी जगह से उठा और मायरा के सामने जाकर अपना हाथ बढ़ाया। चलो एक और मिशन के लिए फिर से एक हो जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद मायरा ने शौर्य से हाथ मिला लिया। वो दोनों वहां से मिस्टर विक्रम सिंह ओबरॉय के कमरे में आए। वो उस वक्त किताब पढ़ने में व्यस्त थे। उन दोनों को अचानक अपने कमरे में देखकर विक्रम जी ने कहा, अगर तुम दोनों को पॉकेट मनी या किसी भी ट्रिप पर जाने की इजाज़त नहीं मिली है तो इस बार मैं तुम दोनों की कोई हेल्प नहीं करने वाला। मैंने कभी तुम दोनों और आर्या में फ़र्क नहीं किया, फिर भी तुम दोनों ने इतनी गिरी हरकत की। हमें भी इस बात का दुख है दादू, और हम चाहते हैं कि भाई इस घर में वापस लौट आए, बोलते हुए मायरा उनके पास आकर बैठ गई। उसके बाद शौर्य की बारी थी। वो उनके पास बैठने के बजाय उनके पैरों के पास बैठ गया और उनके पैर दबाने लगा। कुछ तो भगवान से डरिए दादू, आप अच्छे से जानते हैं कि आप बिग ब्रो को हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमें उसकी कोई शिकायत नहीं है, वो बड़े हैं तो उनका हक बनता है। तुम दोनों हक की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते, जरूर दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही होगी या आर्या के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे होगे, तभी उसे घर बुलाना चाहते हो। विक्रम जी को उन दोनों के वहां आने की वजह समझते देर नहीं लगी। उनकी बात सुनकर शौर्य और मायरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। मायरा जल्दी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है दादू, हम इतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप समझ रहे हैं। हाँ तुम दोनों उससे कई गुना ज्यादा बुरे हो। अब तुम दोनों कुछ भी कर लो, लेकिन आर्या इस घर में वापस कभी नहीं आएगा, विक्रम जी ने आंखें दिखाकर कहा। हम खुद उनसे माफी मांगने जाएंगे तब भी वो घर वापस नहीं आएंगे क्या? शौर्य ने मासूम चेहरा बनाकर पूछा। तब भी नहीं, अगर तुम दोनों के इरादे अच्छे होते तो इस वक्त मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होता। चलो अब जाओ, मेरा मूड खराब मत करो, वैसे भी बुक का फ्लो काफी सही जा रहा है। विक्रम जी ने उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आर्या को घर लाने के लिए शौर्य और मायरा ने विक्रम जी के जरिए जो प्लान बनाया था वो बुरी तरह फेल हो गया। दोनों वापस अपने कमरे में आ गए और आर्या को वापस घर लाने के लिए प्लान बनाने लगे। ब्रो को घर लाने का एक और आइडिया है, शौर्य ने कहा। वो यहाँ कैरन की वजह से वापस नहीं आ रहे, अगर हम कैरन को ही यहाँ से निकाल दें तो ब्रो वापस आ जाएंगे। प्लान काफी अच्छा है, पर वो लड़की यहाँ से क्यों जाएगी? थोड़ी बहुत होप तुम्हारी मॉम से थी, पर उन्होंने भी डैड का साथ दिया। डोंट वरी, आई नो वेरी वेल कि उसे बाहर कैसे निकालना है। शौर्य के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी जिससे साफ था कि उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा है।